नमस्कार भारत, तारीख 6 नवंबर, दिन सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका के टेक्सास के चर्च में गोलीबारी में दो दर्जन से ज्यादा की मौत, कई लोग जख्मी।
I'm about 50 yards away. There's a row of houses. We went running outside.
बड़ी तादाद में लीक हुए वित्तीय दस्तावेजों में दावा, अमीर और शक्तिशाली लोग टैक्स बचाने के लिए चुपके से विदेशों में करते हैं निवेश। जानेंगे केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा के पहले दौरे को लेकर कश्मीर में क्या है माहौल।
पॉलिटिकल डायलॉग एक वाहिद रास्ता है हमारी नजर में, और इस बारे में लाजमी तौर पर अवाम में विश्वास काफी कम हुआ है।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी प्रांत टेक्सास के गवर्नर ने एक छोटे से कस्बे सदरलैंड स्प्रिंग्स के एक चर्च पर हुए हमले में 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। गवर्नर ग्रेग अबॉट ने इसे प्रांत का सबसे दर्दनाक हमला कहा है। इस हमले में करीब 20 लोग घायल भी हुए हैं। रविवार सुबह एक हमलावर ने द बाप्टिस्ट चर्च में उस समय हमला किया जब वहां प्रार्थना सभा चल रही थी। टेक्सास के जन सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक हमलावर गोरा व्यक्ति था जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और उसने असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया। बाद में यह हमलावर अपने वाहन में मृत मिला। अमरीकी मीडिया ने हमलावर की पहचान 26 वर्षीय डेविन कीली के रूप में की है। सदरलैंड स्प्रिंग्स की निवासी डाना फ्लेचर ने घटना के बाद कहा, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, ऐसा अभी न्यूयॉर्क में हुआ था, ये बड़े शहरों में होता है। मेरे पिता ने मुझे सेफ में से बंदूक निकालना और गोली भरना सिखाया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा हमला यहाँ हो सकता है तो फिर ये कहीं भी हो सकता है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बेहद अमीर लोग कर बचाने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। नाइकी, एप्पल, उबर और फेसबुक जैसी कंपनियां और दुनिया के कई अरबपति कर को कम करने के लिए टैक्स हेवन देशों का सहारा लेते हैं। द पैराडाइज पेपर्स कहे जा रहे इन दस्तावेजों से ये भी पता चला है कि दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के 120 से अधिक नेता किसी न किसी रूप में विदेशों में निवेश करने में शामिल हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि इससे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अरबों डॉलर का नुकसान होता है जिसका असर सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ता है। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि ब्रितानी महारानी एलिजाबेथ के निजी धन में से 1 करोड़ पाउंड की राशि केमैन द्वीप और बरमुडा में स्थित विदेशी फंड में निवेश की गई। शाही परिवार से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि महारानी को इस निवेश के बारे में जानकारी नहीं थी। सऊदी अरब के एक सरकारी चैनल के मुताबिक यमन की सीमा के पास हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में राजकुमार और कई उच्च स्तरीय अधिकारियों की मौत हो गई है। प्रिंस मंसूर बिन मुकरिन असीर प्रांत के डिप्टी गवर्नर थे और सऊदी अरब के पूर्व क्राउन प्रिंस मुकरिन अल सऊद के बेटे थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। हेलीकॉप्टर दक्षिणी सऊदी अरब में आभा शहर के पास हादसे का शिकार हुआ है। रविवार को ही सऊदी अरब ने कहा था कि उन सभी राजकुमारों, मंत्रियों और उद्योगपतियों के बैंक खाते सीज कर दिए जाएंगे जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। कैटालोनिया के निर्वासित नेता कार्लस पुज़दिमोन और उनके 4 पूर्व मंत्रियों को बेल्जियम की अदालत ने सशर्त रिहा कर दिया है। स्पेन की ओर से यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद वो बेल्जियम की अदालत में पेश हुए थे। जज ने कहा कि 5 कैटलन नेता बिना बताए बेल्जियम से बाहर नहीं जा सकेंगे और उन्हें अपने रहने के स्थान के बारे में भी अदालत को जानकारी देते रहना होगा। इन नेताओं से अदालत की ओर से समन जारी होने और हर 15 दिनों में अदालत में पेश होने के लिए भी कहा गया है। विवादित जनमत संग्रह के बाद पुज़दिमोन ने कैटालोनिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, जिसके बाद स्पेन ने कैटालोनिया की स्वायत्ता को रद्द कर दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। अमेरिका में एक बंदूकधारी ने रविवार को प्रार्थना के दौरान एक चर्च में फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी है। ये घटना टेक्सास के छोटे से कस्बे विल्सन काउंटी में हुई। बंदूकधारी की भी मौत हो गई है।
I'm about 50 yards away. There's a row of houses. We went running outside when we
ये एक प्रत्यक्षदर्शी की आवाज जो बता रही थी कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी तो वो बाहर निकले। इसके बाद सुरक्षा के लिए वापस अंदर आ गए। उनकी आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त दहशत का कैसा माहौल रहा होगा। इस घटनाक्रम पर ताजा जानकारी के लिए मैंने कुछ देर पहले बात की अमेरिका में मौजूद बीबीसी संवाददाता इरम अबासी से और पूछा कि क्या जानकारी अब तक आ चुकी है और कैसी प्रतिक्रिया वहां पर देखी जा रही है।
सुबह 11 बजे टेक्सास के एक इलाका है सदर्न स्प्रिंग्स, वहां पर ये वाक्य चर्च है। वहां पर सुबह 11 बजे रूटीन के मुताबिक चर्च सर्विस चल रही थी जब एक बताया जा रहा है कि शूटर दाखिल हुआ चर्च में और उसने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अभी तक इत्तलात है कि 20 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि शूटर जो है उसको मार दिया गया है। FBI पुलिस जो है तमाम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त कर रही है। शूटर का हमले आवर का क्या मोटिव था, क्या इरादा था, क्यों उसने ये किया, ऐसा इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई तफसीलात नहीं है। जहां तक इस कम्युनिटी की बात है तो ये बहुत ही पॉपुलेशन इस इलाके की बहुत कम है एंड इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोगों की तादाद है वो बहुत कम है और ये 20 लोगों का या इससे ज्यादा लोगों का हलाक होना एक बड़ा रेशो उस पॉपुलेशन का बनता है। साथ साथ ये बताना जरूरी है कि पिछले माह ही हमने देखा था कि लास वेगस में एक मैस शूटिंग का वाकया पेश आया, 50 से ज्यादा लोग उसमें हलाक हुए थे। मैस शूटिंग को बेसिकली 4 से ज्यादा अगर लोग हलाक हो तो उसको मैस शूटिंग कहा जाता है और ऐसे 300 से ज्यादा वाकयात पेश आए हैं अमेरिका में 2017 में बताया जा रहा है। साथ ही साथ रिएक्शन भी आ रहा है, टेक्सास के जो गवर्नर हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेयर्स विक्टिम्स के लिए भेजी हैं और उनको कहा है कि आप स्ट्रांग रहें। प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वक्त एशिया के टूर पर हैं वो जापान में मौजूद हैं और वहां से उन्होंने ट्वीट की है कि वो सूरत हाल को उस पर नजर रखे हुए हैं।
इरम, हम ये जानना चाहेंगे कि इस घटना के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर देखी जा रही है।
सोशल मीडिया पे जाए तो वहां पे बहुत सारे लोग अमरीकी इंतजामिया बिलखसूस प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से ये उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जब न्यूयॉर्क में हमने देखा चंद दिन पहले एक हमला आवर जिसका ताल्लुक बताया गया था कि आइसिस से है, वो क्योंकि मुसलमान था और उस हमले में उसके बाद से जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन था वो काफी सख्त था और इसके लिए उन्होंने कहा था कि अब इमिग्रेशन को मजीद सख्त कर देंगे, वेटिंग को मजीद बढ़ाया जाएगा। जबकि इस हमले के बाद लोग ये कह रहे हैं कि वो उस सख्ती से बात नहीं करते क्योंकि माना जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गन के लॉज बनाने में, गन के इस्तेमाल को कम करने में उस तरह से कोई उनकी अवलीन तरजीह नहीं है। तो इस वाक्य के बाद यही इम्कान है कि एक मरतबा फिर अमेरिका में ये डिबेट शुरू होगी कि गन लॉज जो है उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि फिगर्स अगर हम देखें तो अमेरिका में इंतहा पसंदी से कम और मैस शूटिंग में लोगों की ज्यादा अमवात वाकई हुई है।
अमरीका के टेक्सास में हुई गोलीबारी की जानकारी दे रही थी इरम अबासी। अब बात बड़ी तादाद में लीक हुए वित्तीय दस्तावेजों की, जिनमें दावा किया गया है कि कैसे अमीर और शक्तिशाली लोग टैक्स बचाने के लिए चुपके से विदेशों में निवेश करते हैं। पैराडाइज पेपर्स नाम के इन दस्तावेजों में कई बड़े नाम हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
रविवार को बड़ी तादाद में जारी हुए दस्तावेजों से पता चला है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोग कर बचाने के लिए किस तरह गुप्त तरीके से टैक्स हेवन देशों में बड़ी मात्रा में पैसा निवेश करते हैं। जिन निवेशकों के बारे में जानकारी सार्वजनिक हुई है उनमें ब्रितानी महारानी एलिजाबेथ की निजी जागीर भी शामिल है। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य मंत्री की ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी है जो अमरीका द्वारा प्रतिबंधित रूसी नागरिकों के साथ व्यापार करती है। दस्तावेजों के इस लीक को द पैराडाइज पेपर्स कहा जा रहा है और इसमें 1,30,00,000 से अधिक दस्तावेज हैं। इनमें से ज्यादातर बरमुडा की एक कंपनी के हैं जो जर्मनी के अखबार ज्यूड डाइचे त्यास्टुंग ने हासिल किए थे। अखबार ने इन्हें जांच के लिए खोजी पत्रकारिता करने वाले संगठन इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स या ICIJ को सौंपा था। ICIJ के साथ मिलकर दुनिया भर के करीब 100 मीडिया संस्थानों ने इन दस्तावेजों की जांच की है। ICIJ के निदेशक गेरार्ड रॉयल ने इन दस्तावेजों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, मैं कहना चाहूंगा कि ये दस्तावेज अपने बारे में खुद बताते हैं और मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता को इस जानकारी के बारे में पता चले और वो इसके आधार पर अपनी राय बनाए। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है, हमें जानकारी मिली थी और हमने सभी कानूनों का ध्यान रखते हुए इस जानकारी को इकट्ठा किया। बीते साल हमने 67 देशों के 400 से ज्यादा पत्रकारों के साथ मिलकर इनकी पड़ताल की और पता किया कि इनमें से जनहित में क्या है। हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों और कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलेंगी और पता चलेगा कि वो कर बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। इन दस्तावेजों में ब्रिटानी महारानी का भी नाम आया है। हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है या उनका पैसा उनकी जानकारी में विदेशों में निवेश किया गया, लेकिन फिर भी इससे उनके लिए स्थिति शर्मनाक हो सकती है। शाही परिवार के वित्तीय मामलों पर नजर रखने वाले डेविड मैक्लियोर कहते हैं,
If the money has been invested in a tax haven, I would have thought it'd be extremely embarrassing for the Queen and the royal family.
अगर पैसा टैक्स हेवन देश में निवेश किया गया है तो मैं कहूंगा कि ये महारानी और शाही परिवार के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली स्थिति होगी। निवेश कहाँ किया जा रहा है इसे लेकर महारानी से उच्च मानकों की उम्मीद की जाती है। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के वित्तीय लेनदेन के बारे में अब तक गुप्त रही जानकारियां सार्वजनिक होने जा रही हैं। इन जानकारियों से कई कंपनियों और लोगों की सार्वजनिक छवि पर असर पड़ सकता है। ये असर कितना होगा ये अगले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा।
तो इन दस्तावेजों की पड़ताल जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। कश्मीर के लिए केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा आज कश्मीर दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहां पर वो कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले महीने गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें कश्मीर पर बातचीत के लिए केंद्र का प्रतिनिधि घोषित करते हुए प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा गले लगाने से। उनके इस दौरे को कश्मीर में कैसे देखा जा रहा है, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
भारत सरकार के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा आज एक ऐसे माहौल में कश्मीर पहुंच रहे हैं जब कश्मीर के राजनीतिक दलों और आम लोगों में वार्ताकार के हवाले से एक किस्म की सर्दमहरी पाई जा रही है। हालांकि आज से दिनेश्वर शर्मा कश्मीर में 5 दिनों का अपना पहला दौरा शुरू कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो अपने दौरे के दौरान घाटी के कई राजनीतिक दलों, व्यापार संगठनों और अन्य लोगों से मिलेंगे। कश्मीर रवाना होने से पहले इतवार को उन्होंने दिल्ली में एक इंटरव्यू में बताया है कि वो बहुत ही खुले दिल के साथ कश्मीर जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि वो हर एक संबंधित पक्ष से मिलेंगे जो भी उनसे मिलना चाहता है। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिनेश्वर शर्मा को नियुक्त करने की घोषणा के फौरन बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बताया था कि भारत सरकार की तरफ से ये एक बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि बातचीत से ही समस्या का हल ढूंढा जा सकता है
और इसके स्टेटमेंट आ गया जो अपॉइंटेड इंटरलॉकेटर जम्मू कश्मीर में बातचीत के लिए और दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड दिस इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड।
विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया है कि दिनेश्वर शर्मा के कश्मीर दौरे से किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं विधायक और CPIM के स्टेट सेक्रेटरी MY तारीगामी ने बातचीत के सिलसिलों को शुरू करने की पहल का स्वागत तो किया है, ताहम उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि आम जनता में अब विश्वास खत्म हो गया है। MY तारीगामी,
देखिए ये वक्त ही बताएगा, पॉलिटिकल डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता है हमारी नजर में और इस बारे में लाजमी तौर पर अवाम में विश्वास काफी कम हुआ है।
कश्मीर के अलगावादियों ने पहले ही दिनेश्वर शर्मा से कोई भी बातचीत करने से इनकार किया है। अलगावादियों ने इल्जाम लगाया है कि भारत सरकार महज वक्त गुजारी के लिए कश्मीर पर वार्ताकारों को नियुक्त कर रही है। दिनेश्वर शर्मा को भारत सरकार ने एक ऐसे समय में कश्मीर के लिए नियुक्त किया है जब बीते 3 वर्षों से मोदी सरकार कश्मीर के अलगाववादियों के साथ किसी भी बातचीत करने से इनकार करती रही है। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने केसी पंत को कश्मीर का वार्ताकार बनाया था, लेकिन उस समय हुर्रियत का कोई भी नेता उनसे नहीं मिला था। वर्ष 2002 में किसी भी सफलता के बगैर उस पहल को बंद कर दिया गया था। उसके बाद राम जेठमलानी की कमेटी का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वर्ष 2003 में एनएन वोहरा को भी कश्मीर का वार्ताकार बनाया गया था, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हो पाया था। वर्ष 2010 में भी 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया था। उस कमेटी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उस रिपोर्ट पर कभी अमल नहीं किया गया। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
तमिलनाडु में एक कार्टूनिस्ट को कथित तौर पर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और 2 अधिकारियों को कार्टून के जरिए अपमानित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्टूनिस्ट जी बालाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर यह कार्टून शेयर किया था। उनकी गिरफ्तारी की आलोचना हो रही है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं इमरान कुरैशी।
26 अक्टूबर को जी बालाकृष्णन ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक कार्टून शेयर किया। बालकृष्ण फेसबुक पर ही कार्टून शेयर करते हैं और उनके कार्टून काफी लोकप्रिय हैं। विवादित कार्टून में दिखाया गया है कि जमीन पर एक बच्चा जल रहा है और मुख्यमंत्री एडप्पाडी पलानीस्वामी, कलेक्टर संदीप नंदूरी और पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार दास नोटों से अपना नंगापन छिपा रहे हैं। ये कार्टून उस घटना पर आधारित था जिसमें एक परिवार ने तिरुनेलवेली के कलेक्टर के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर ली थी। ये परिवार साहूकारों के दबाव में था। तिरुनेलवेली के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शक्ति कुमार ने BBC को बताया, कलेक्टर ने एक शिकायत दर्ज की थी जिसके आधार पर हमने उसे गिरफ्तार किया है। IPC की धारा 501 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनको चेन्नई से तिरुनेलवेली ले जाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये थे SP डॉक्टर अरुण शक्ति कुमार के शब्द। कल उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर जोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिली। तमिलनाडु के NGO मकसूल ट्रस्ट के सदस्य जयराम कहते हैं, हम मानते हैं कि कार्टून बैड टेस्ट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभिव्यक्ति की आजादी की परवाह ही ना करें। संविधान कहता है कि आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। हमें इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। ये थे जयराम के शब्द। तो सवाल ये उठा है कि क्या उस कार्टून से बालकृष्ण, मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और 2 अधिकारियों का बदनाम किया गया है। हमने ये सवाल चेन्नई के वकील अनंत कृष्णा से पूछा। उन्होंने कहा, कार्टूनिस्ट बालकृष्णन का मामला तमिलनाडु में पहला वाक्या नहीं है। इस तरह के मामले पहले भी बहुत हो चुके हैं। सवाल ये है कि कब तक इस तरह के मामले इस दक्षिण राज्य में चलते रहेंगे। जब असली मुद्दा भारी रकम ब्याज पर पैसे देने वालों का है, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इमरान कुरैशी, BBC, बेंगलुरु।
और वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। क्या कहते हैं आज के अखबार दिलनवाज
जी? सबसे पहले नजर आज के द इंडियन एक्सप्रेस में, जो द पैराडाइज पेपर्स को भारत में प्रकाशित कर रहा है। अखबार ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में किस तरीके से पैराडाइज पेपर्स के बारे में खबरें आएंगी, और अखबार ये भी बता रहा है कि बरमूडा की जिस लॉ फर्म के ये दस्तावेज लीक हुए हैं उससे जुड़े भारत में 714 कनेक्शन हैं। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो पहले से CBI की जांच के दायरे में है
जी।
इसके अलावा एक और तस्वीर है, आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, एक दूसरे को गले लगाती हुई। दरअसल भारत की महिला हॉकी टीम ने 13 साल बाद फिर से एशिया कप जीता है, और ये संयोग ही है कि भारत की पुरुष टीम ने भी एशिया कप जीता है। तो ये जी, ये कुछ दिन पहले जीता था। ये तस्वीर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जिक्र करूंगा नई दुनिया की एक खबर का, आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले भोपाल में एक गैंगरेप की वारदात हुई और जो कई दिन तक सुर्खियों में रही, उसी से जुड़ी खबर है। अब IG भोपाल योगेश चौधरी और SP रेल अनीता पर गिरेगा आज, इनको जो है पद से हटा दिया गया है। जिन SP रेल अनीता की बात हो रही है, इनकी बलात्कार के बारे में बात करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए तस्वीर आई थी, बयान आया था, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। और जीएसटी की वजह से बहुत से लोगों को महंगाई से दिक्कत हुई है। नवभारत टाइम्स बता रहा है कि जीएसटी की दरें घटाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और रोजमर्रा के सामानों पर राहत हो सकती है। अब देखना होगा अगले कुछ दिनों में क्या इस तरीके का कोई फैसला आता है या नहीं। और नोटबंदी के बाद भारत में 2.25 लाख फर्जी कंपनियां बंद कर दी गई, ये खबर आज कई अखबारों के पहले पन्ने पर है अलग अलग तरीके से। और अब एक सियासी चुनाव का मौसम है, चुनावी जंग में जो है प्रचार का रंग चढ़ा हुआ है और जनसत्ता ने राहुल गांधी के उस बयान को छापा जिसमें वो कह रहे हैं दाम बांधो काम दो वरना सिंहासन खाली करो, नरेंद्र मोदी जी से पद छोड़ने के लिए राहुल गांधी ने कल कहा।
शुक्रिया दिलनवाज। और अब पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी।
ठंड शुरू होते साथ ही पाकिस्तानी पंजाब में इस्लामाबाद से मुल्तान तक स्मोक छाया हुआ है। सुबह और शाम में 20 फुट और दोपहर में 50 फुट के बाद कोई चीज़ टिपाई नहीं दे रही। जीवन की गाड़ी आंकड़े के गियर पे चल रही है, रेल 12-12 घंटे लेट हो रही है, मुसाफिर विमान भी इसी दुविधा में हैं कि उड़ गए तो उतरेंगे कैसे और उतर गए तो उड़ेंगे कैसे। हम जब बच्चे थे तो सर्दियों में स्कूल जाते समय धुंध से मुलाकात होती थी और जैसे जैसे सूरज की किरणें गर्म होती जाती धुंध भी छटती जाती और 10-11 बजे तक हर चीज़ साफ साफ नज़र आने लगती। मगर जब से कारखानों और ट्रैफिक का धुआं और फसल कटने के बाद खेत के फालतू डंठल और कचरे को ठिकाने लगाने की बजाय जलाने का काम बढ़ा है तो धुंध भी गहरे धुएं के बादल में बदल गई है और फिर ये बादल ठंडा होके शहर के ऊपर जम जाता है और इसके ज़र्रे सांस के ज़रिए शरीर में जाके लोगों को बीमार कर देते हैं। यानी उद्योग और खेती की बेलगाम बढ़ोतरी ने हमारी तरक्की को हमारे लिए ही फंदा बना डाला है। मगर हम अब भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहे बल्कि खुद को सुधारने की बजाय दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे मौसम की जांच करने वाला उद्योग हर वर्ष पहले से ज़्यादा बनने वाले स्मोक के बारे में कहता है कि अगर भारतीय पंजाब के किसान अपने खेतों को फसल की कटाई के बाद साफ करने के लिए आग न लगाएं तो सीमा से लगे लाहौर और मुल्तान में स्मोक से निपटा जा सकता है। मैं सोच रहा हूं कि पंजाब का किसान भले इस तरफ का हो या उस तरफ का, विभाजन के पहले ही अपनी खेती पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह साफ करता आ रहा है। अगर स्मोक का मुख्य कारण यही है तो फिर स्मोक जैसा शब्द पिछले 5 वर्ष से ही क्यों सुनाई दे रहा है, इस शब्द को तो 100 वर्ष पहले ईजाद हो जाना चाहिए था। अच्छा तो फिर दिल्ली में स्मोक क्यों है, बीजिंग में स्मोक क्यों है, क्या आपके कारखानों की चिमनियों ने धुआं छोड़ना बंद कर दिया, आपकी सड़कों पे चल रही एनवायरमेंट फ्रेंडली धुआं छोड़ने वाली लाखों गाड़ियों में से कितनी गाड़ियों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, पिछले 70 वर्ष में कितने कारखानों को प्रदूषण फैलाने का दंड भरना पड़ा है, कचरा जलाने के कितने प्लांट्स आप अब तक स्थापित कर चुके हैं, जिस दिन आपने इनमें से आधे काम भी कर लिए उससे अगले वर्ष पैदा होने वाला स्मोग आपको खुद ही बता देगा कि ये जंग कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फिर आपका ये कहना भी जायज़ होगा कि हमने तो अपने हिस्से का काम कर लिया मगर ये पड़ोसी देश धुआंधार आतंकवाद पे उतरा हुआ है। दोनों देश स्मोग जैसी समस्याओं से एक साथ निपटने से ज़्यादा एक दूसरे से निपटने के चक्कर में रहते हैं, और विडंबना क्या होती है।
आप सुन रहे थे वसतुल्ला खान की डायरी। आपको ये डायरी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी जिसमें आदेश कुमार गुप्त खेल की खबरें विस्तार से बता रहे हैं।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया। जापान में खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने चीन को 5-4 से मात दी। मैच का फैसला पेनल्टीज से हुआ क्योंकि निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थी। वैसे मैच का पहला गोल भारत की ओर से नवजोत कौर ने 25वें मिनट में किया लेकिन 47वें मिनट में चीन की तियान तियान ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर किया। निर्धारित समय तक स्कोर यही रहा। पेनल्टीज में भारत की रानी मोनिका, नवजोत, लिलिमा और रानी रामपाल ने गोल किए। महिला एशिया कप में दक्षिण कोरिया ने मेजबान जापान को 1-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इससे पहले साल 2004 में एशिया कप जीता था। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम अजय रही। इसके साथ ही टीम के कोच हरेंद्र सिंह भी अपनी पहली परीक्षा में कसौटी पर खड़े उतरे। भारतीय टीम की कामयाबी को लेकर पूर्व ओलंपियन और हॉकी इंडिया के चयनकर्ता हरबिंदर सिंह कहते हैं,
बहुत अच्छी बात है। हरिंदर का जैसे जूनियर वर्ल्ड कप इन्होंने जो मेन का जीता लखनऊ में, उन्होंने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता। हमारी पुरुष टीम ने ये टाइटल जीता और इन्होंने ये टाइटल जीतकर डबल एशिया का टाइटल हॉकी इंडिया को दिया।
और अब समीक्षा। समाप्त हुआ फीफा अंडर 17 विश्व का फुटबॉल टूर्नामेंट, लेकिन अब आगे क्या होगा भारतीय फुटबॉल का?
इन अंडर 17 वर्ल्ड फुटबॉल इट बिलोंग्स टू इंग्लैंड।
आखिरकार भारत की मेजबानी में फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट को इंग्लैंड के रूप में नया चैंपियन मिल ही गया, जिसने 66,000 से ज्यादा दर्शकों से खचाखच भरे कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन को 5-2 से मात दी। रही बात भारत की टीम की, तो वो अपने ग्रुप के तीनों मुकाबले हार कर दूसरे दौर तक भी नहीं पहुँचा। अब इस विश्व कप में खेलने वाले अंडर 17 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों का क्या होगा? क्या उनका विश्व कप में खेलना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात माना जाए? जाने माने फुटबॉल विशेषज्ञ नोविका पाडिया कहते हैं,
जो इंग्लैंड जो जीती है उनके खिलाड़ी 4 चेल्सी से थे, कुछ मैनचेस्टर सिटी से थे। वो कोई मेन मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी की टीम में नहीं खेल रहे, वो तो उनकी युवा टीमों में खेल रहे, उनकी डेवलपमेंट टीमों में खेल रहे। हमारी क्लबों में ऐसा चीजें नहीं है, तो ये चीज शुरू करना चाहिए, तभी अंडर 17 के खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है।
अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में महज क्रिकेट का ही बोलबाला है, फुटबॉल का नहीं। कभी भारत की फुटबॉल टीम 1951 के दिल्ली और साल 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता थी। यहाँ तक कि भारत की फुटबॉल टीम 1948 के लंदन, 1962 के हेलसिंकी, 1956 के मेलबोर्न और 1960 के रोम ओलंपिक गेम्स भी खेल चुकी है। तो क्या फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी उस सीनियर टीम में भी जान फूंक सकेगी जिसकी फीफा रैंकिंग 100 से 150 के बीच झूलती रहती है? और भारतीय खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट केवल आई लीग और ISL है, पूर्व ओलंपियन SS हकीम कहते हैं।
अब ISL आई लीग में आधे प्लेयर तो बाहर के खेल रहे हैं, आपकी टीम को क्या फायदा हो? ठीक है, प्लेयरों को पैसा मिल रहा है, रेफरी को पैसा मिल रहा है, जब तक स्टेट का फुटबॉल नहीं आएगा इंडिया का फुटबॉल कैसे ऊपर आएगा? हैदराबाद जहां से 15 ओलंपियन के लिए एक टूर्नामेंट नहीं होता, साल भर में लीग भी नहीं होता।
करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी अगर भारत की फुटबॉल असली मैदान में कामयाबी के गोल में नहीं बदलेगी तो इसे तमाशा देखने से ज्यादा क्या कहा जाए। उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तिरुवनंतपुरम में तीसरा और आखिरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दिल्ली में खेले गए पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने पलटवार करते हुए राजकोट में खेले गए दूसरे मैच में भारत को 40 रन से हराया। न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने शतक जड़ा तो तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट झटक कर जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज होने वाले इस अहम मुकाबले को लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
डिसाइडर है और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेला है काबिले तारीफ तो है ही, बड़ा झटका लगा है इंडिया को, बहुत बड़ी जीत। और टॉप ऑर्डर में मुनरो गप्टिल फॉर्म में आ गए हैं, उनके गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खास करके फैंटनर और ट्रेंट बोल्ट। इंडिया को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये सीरीज हार ना जाए। ये भी ना भूले कि न्यूजीलैंड वैसे T20 में नंबर 1 रैंक टीम है ICC।
तो देखना है जीत का ऊंट आज किस करवट बैठता है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और कार्यक्रम के आखिर में विश्व समाचार एक बार फिर।
अमरीकी प्रांत टेक्सस के गवर्नर ने एक छोटे से कस्बे सदरलैंड स्प्रिंग्स के एक चर्च पर हुए हमले में 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बेहद अमीर लोग कर बचाने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि ब्रितानी महारानी एलिजाबेथ के निजी धन में से 1 करोड़ पाउंड की राशि केमैन द्वीप और बर्मुडा में स्थित विदेशी फंड में निवेश की गई है। سعودی عرب کے سرکاری چینل کے مطابق یمن کی سیما کے پاس ہوئے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ایک راجکمار اور کئی اچ استریہ ادھیکاریوں کی موت ہو گئی ہے۔ کیتالونیا کے نرواست نیتا کارلس پوزدیمون اور ان کے چار پورو منتریوں کو بیلجیم کی عدالت نے سشرط رہا کر دیا ہے۔ لبنان کے شیعہ سنگٹھن حزب اللہ کے نیتا حسن نصر اللہ نے سعودی عرب پر لبنان کے پردھان منتری کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کرنے کے آروپ لگائے ہیں۔ بی بی سی سماچار۔
بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت کے اس انک میں اتنا ہی۔ شام 7:30 بجے دن بھر کارکرم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک آدرش راٹھور کو سبھی سہیوگیوں کے ساتھ دیں اجازت۔ نمسکار۔